मेरे आत्मीय युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 21 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सभी के साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं हरेंद्र ठाकुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आशुतोष कुमार भास्कर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से और राज कुमार मथुरा उत्तर प्रदेश से। तो हरेंद्र, आशुतोष और राजकुमार, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम मुख्य विषय के रूप में अपनी हमारी जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, जो फिलहाल मंदी के दौर से गुजर रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। और सच पूछे तो अर्थव्यवस्था में मंदी के बहाने में कुछ आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि आपको इसकी तैयारी करने के बारे में, यानी इस विषय पर तैयारी करने के बारे में कुछ दिशा निर्देश मिल सके। मैं मंदी पर ही अपनी बात केंद्रित नहीं करूंगा, वहां से चीजें उठा करके हम कुछ अर्थव्यवस्था पर या आर्थिक अर्थशास्त्र पर, आप यूं कह लीजिए, ज्यादा अच्छा शब्द होगा, बातें करेंगे। आइए, इससे पहले हम लोग थोड़ी सी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। मित्रों, जो आज के अखबार में आपको एक बड़ी घटना पढ़ने को मिली होगी, वह मैक्सिको में भूकंप आया हुआ है। फिर उसी के ठीक थोड़ा सा ऊपर राइट साइड में अगर आप नक्शे में जाएंगे, जिसे हम कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं, कैरेबियाई देश, वहां की तबाही का मंजर, और वहां तबाही इस बात को लेकर के आया हुआ है, मारिया तूफान। इससे पहले आपने हार्वे तूफान के बारे में पढ़ा, हार्वे तूफान आया, उसने अपने विभत मतलब कह लीजिए कि विकराल रूप दिखाया। इसके बाद फिर हार्वे के बाद इरमा तूफान आया और अब आया है मारिया तूफान। ये तीन तूफान अभी एक महीने के अंदर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के हैं, और अभी ये जो मारिया तूफान आया है, याद रखिए, अटलांटिक महासागर का है। मतलब जो भी इधर आपके साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को ले लें, देखिए, नक्शा जब तक आप नहीं देखने की आदत डालेंगे तब तक आप इन विषयों पर कमांड नहीं बना सकते। और अगर आप नक्शा नहीं देख सकते हैं आलस्यवश या ऊबवश या आपको पसंद नहीं है, तब मान करके चलिए कि आप कम से कम ज्योग्राफी के मामले में तो, काफी कुछ मामलों में इतिहास विषय के मामले में भी आप सिविल सर्विस के स्टैंडर्ड की तैयारी नहीं कर सकते। मित्रों, यहां सवाल हमारी पसंद नापसंद का है ही नहीं, सवाल इस बात का है कि हमारे आपके लिए जरूरत क्या है। तो अगर आप, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, नक्शे अगर आप देख रहे हैं, आपकी आदत में है, तो आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो दोनों कॉन्टिनेंट हैं, वो नक्शे को अपने सामने रख लीजिए और उसका जो दाहिना भाग है, आपका दाहिने हाथ वाला जो हिस्सा है, इसे हम इन दोनों महाद्वीपों का ईस्ट पार्ट कहेंगे। ईस्ट पार्ट है, ईस्ट पार्ट, और बीच में आप देखिए कि अगर आप थोड़ा सा और दाहिने की तरफ चले जाएंगे तो ऊपर की तरफ यूरोप महाद्वीप है और नीचे की तरफ अफ्रीका महाद्वीप है, और यूरोप अफ्रीका महाद्वीप दोनों एक लाइन से ऊपर नीचे है, उत्तर दक्षिण दिशा में है, और ठीक इसी तरह से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका उत्तर दक्षिण दिशा में है, उनके बीच में महासागर है, इनके बीच में महासागर है, और ये महासागर अटलांटिक महासागर, जिसको डिवाइड कर दिया गया है, उत्तर वाले भाग को नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक महासागर, और नीचे वाले भाग को दक्षिण अटलांटिक महासागर। तो देखिए, जो कैरेबियाई द्वीप में जो संकट आएगा वो बट नेचुरल है कि अटलांटिक महासागर से आएगा। मतलब इस तरह से आप रिलेट करके जब चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, तब सिविल सर्विस की तैयारी होती है। तो इसने, जैसा कि मैंने कहा कि जो अभी जो तूफान आया है, ये तूफान जो है, मैं शायद भूकंप बोल गया, उसको तूफान समझ लीजिएगा आप, कि जो ये जो तूफान है ये अटलांटिक महासागर से उठा है, इसने कैरेबियन द्वीप को तबाह किया है, वहां जो द्वीप है, जो देश है, इसके बाद वो बट नेचुरल है कि वही आकर के फिर अमेरिका जो देश है उसके दक्षिण को बर्बाद करेगा। जैसे हार्वे तूफान आया तो वो दक्षिण अमेरिका पर प्रभाव उसने डाला, मतलब दक्षिण अमेरिका, मतलब अमेरिका के दक्षिणी भाग पर, जिसमें आपके ह्यूस्टन वगैरह आते हैं। तो आप देखिए कि थोड़े से आप मैप का सहारा ले लेंगे तो चीजें आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होती चली जाएंगी। अगर आज का अखबार आपने ध्यान से पढ़ा हो मित्रों, तो मैं तीन आइलैंड के नाम आपको बता रहा हूं जो कैरेबियाई आइलैंड है, तीन महाद्वीपों के नाम, और ये महाद्वीपों के नाम आपको मालूम होने चाहिए, कभी कभी इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर सिविल सर्विस में। तीन नाम आप ध्यान से सुन लें, प्यूर्टोरिका, प्यूर्टोरिका पहला है, दूसरा है ग्वाडेलोप और तीसरा है डोमिनिका। ये तीन आइलैंड है जो बुरी तरह से दुष्प्रभावित हुए हैं, एक आइलैंड तो इसमें से बर्बाद भी हो गया है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा द्वीप आइलैंड कैरेबियाई द्वीप नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें इन तीनों के नाम जरूर होंगे। चौथे को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, राइट। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, प्यूर्टोरिका, ग्वाडेलोप, डोमिनिका। मित्रों उच्चारण करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में और फिर हिंदी में लिखा हुआ भी अगर है तो कितना सही है। तो ये मैंने आपको तीन द्वीपों के नाम बताए हैं, आइलैंड है जो मारिया तूफान से जबरदस्त रूप से तबाह हुए हैं। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था मैक्सिको में आए भूकंप की, राइट। तो मैक्सिको के भूकंप के बहाने अभी आपके पास अवसर है कि आप भूकंप पर बहुत अच्छी तैयारी कर ले। सच पूछिए तो आज के मुख्य विषय के रूप में मैं भूकंप को ही लेना चाह रहा था कि मैं भूकंप पर बात करूं। आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए तो बकायदे उसमें भूकंप और ज्वालामुखी वगैरह मेंशन किए हुए हैं, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी अलग से आपके सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सिलेबस में है तो इंपॉर्टेंट है, इस तथ्य को आप न भी माने लेकिन तब जब आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि भूकंप ज्वालामुखी पर कोई ना कोई प्रश्न पूछ ही लिया जाता, मेंस में पूछा ही जाता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे टॉपिक की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो मित्रों भूकंप के विषय को मैंने आज मुख्य विषय के रूप में नहीं लिया है, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, चूंकि भूकंप के चैप्टर्स ऑलरेडी आपकी किताबों में हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खुद समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरों से समझ सकते हैं। बल्कि मुझे चाहिए कि मैं अर्थव्यवस्था में मंदी वाले विषय को लूं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। एक बात मैं भूकंप के बारे में जरूर कहना चाहूंगा, मैंने महसूस किया है कि जो स्टूडेंट होते हैं जब वो भूकंप के चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें एक विस्थापन का जो सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि कैसे ये महाद्वीप अंदर से मूव कर रही है। ये माना गया है कि पूरी की पूरी दुनिया नीचे से चट्टानों के कुछ प्लेट्स पर टिकी हुई है और उन प्लेट्स के मूवमेंट से भी भूकंप आते हैं, जो महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और बकायदे एनसीईआरटी की किताब में है भी। इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा समझने वाला विषय है, और चूंकि समझने से लोग थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसे छोड़ देते हैं, और इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ देते हैं, जबकि कठिन नहीं है। अगर किसी की आपको मदद मिल जाए तो तुरंत आपको समझा देगा, जिसका भी थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड होगा वो इसे तुरंत समझ भी लेगा और आपको समझा भी देगा। तो मित्रों इसे आप जरूर अच्छे से तैयार करें। एक आध छोटी खबर है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने खबर, कल हमारे मंत्रिपरिषद की, मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि अभी तक हमारे जो 17 सरकारी प्रेस हैं, 17, उनको 5 में एकीकृत कर दिया जाएगा, जैसे कि बैंकों को किया जा रहा है, उसी तरह का एक रूप है। अब आप देखिए कि बैंकों की संख्या कम की जा रही है, सरकारी प्रेस की संख्या कम की जा रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ ये नीति ले रही है कि जो बिखरी हुई चीजें हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए। अब डायरेक्शन देख रहे हैं ना, अभी देखते हैं कि और क्या निर्णय होते हैं। अगर एक दो और ऐसे निर्णय होते हैं मान लीजिए, तो एक प्रकार से यह आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा कि ये कितने उपयोगी हैं, कितने व्यावहारिक होंगे, इनके क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह एक टॉपिक बन सकता है। लेकिन अब तो मैं, अगर अक्टूबर की बात हम करें फ्रेंड्स, तो हम तो अब सेप्टेम्बर के बिल्कुल थर्ड वीक में एंटर कर चुके हैं और खत्म होने ही वाला है थर्ड वीक, एंटर क्या कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो जिन टॉपिक पर भी हम बात करेंगे, मान करके चलिए कि अब वो अक्टूबर के मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगले साल जून के प्री के लिए डेफिनेटली वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, राइट। मित्रों इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, मैं एक तथ्य की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। रोहिंग्या मामले में हम लोग काफी बातें कर चुके हैं, और बातचीत के दौरान जब सबसे पहले मैंने इसकी चर्चा की थी तो मैंने एक संधि की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय संधि की, उसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मतलब फैक्ट है, समझ लीजिए तथ्य है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और बस कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अगर आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हैं तो मानकर चलिए कि उस पर आपकी अच्छी तैयारी हो गई है, बस अब लिखना आना चाहिए और लिखना आपको आता है। मित्रों, जो अभी रोहिंग्या मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का। एक तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 1951 की संधि का रेफरेंस दिया है, 1951 आप इतने जानना सफिशियंट है। दूसरा उन्होंने 1967 के एक प्रोटोकॉल का उल्लेख किया है, और ये दोनों जो संधि और प्रोटोकॉल है ये शरणार्थियों के बारे में है कि भाई जो शरणार्थी होंगे इस तरह से राजनीतिक संकट प्राकृतिक आपदाओं से जो परेशान होकर के आएंगे तो उन्हें आप मना नहीं करेंगे, वो मानवता के आधार पर उन्हें शरण देंगे, इस तरीके की उन संधियों में व्यवस्था है। एग्जैक्ट मैं बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा है कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय संधि ऐसी है तो भारत को यह निर्णय नहीं लेना चाहिए कि उनके यहां जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें वापस भेजा जाए और यहां की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके बारे में जो केंद्र सरकार ने अपना फाइल दायर किया है, और सच पूछे तो वो सही भी है, एक फैक्ट आपकी जानकारी में होना चाहिए जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि ठीक है संधि है प्रोटोकॉल भी है लेकिन अगर हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए तो हम बाध्य थोड़ी हैं, हमको तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे पेरिस जलवायु सम्मेलन आप देखिए, अमेरिका ने कह दिया कि हम छोड़ रहे हैं तो छोड़ सकता है, मतलब हम गुलाम नहीं है उसके। हाँ, अगर हम हस्ताक्षर कर चुके होते तो उसे मानने के लिए बाध्य थे। तो आपके दिमाग में ये दोनों तथ्य होने चाहिए, 1951 और 1967 का प्रोटोकॉल, और तीसरा ये कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ये सत्य आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप यूं समझ लीजिए कि फंस जाएंगे आप, राइट। चलिए मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, अर्थव्यवस्था में मंदी। इसको लेकर के मैं आज आपको दैनिक भास्कर का एक एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, न्यूज में भी आपने सुना है और अखबारों में भी इस पर लिखा गया है। देखिए कि अगर हम नई सरकार की शुरुआत की बात करें तो नई सरकार ने कुछ वायदे किए थे अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, नौकरियां अवेलेबल कराई जाएंगी, लगभग 2 करोड़ की नौकरी का वायदा था, वो नौकरी नहीं मिली, मतलब उतनी नौकरियों के अवसर नहीं आए। फिर यह भी कहा गया था कि विदेश में जो काला धन रखा गया है वो काला धन हम बाहर से अपने देश में लाएंगे, वह भी अभी नहीं आया है, राइट। जो हमारी वृद्धि दर है वो हम 7% उससे अधिक ही करेंगे, तो हमारी जो वृद्धि दर है अब वो घटकर 5.7% हो गई है, वार्षिक वृद्धि दर जो है जीडीपी की वो घटकर 5.7% हो गई है, जो चौंकाने वाली है। मतलब अब तक की जो 5 साल की जो वृद्धि दर है सच पूछे तो उसमें ये फिलहाल सबसे कम है। जो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो इंडेक्स जो आ रहा है औद्योगिक उत्पादन का, औद्योगिक विकास का, वह भी 5 साल से सबसे नीचे है। खेती में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है। जो व्यापार घाटे के कारण जो है हमारा चालू खाते का घाटा भी बढ़ा है, जो जीडीपी का 2.4% पहुंच गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ा है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए कि अब फॉरेन जो हमारा कोष है, जो हमारा विदेशी मुद्रा का जो कोष है वो बहुत बढ़ा है, उसमें काफी वृद्धि हुई है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है? अब आप देखेंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार बढ़ रहा है, उसकी जो ज्यादातर जो राशि है वो पोर्टफोलियो निवेश में आ रही है। पोर्टफोलियो में निवेश में आने का मतलब है कि वो शेयर मार्केट में तो पैसा लगा रहे हैं लेकिन भारत में उद्योग नहीं लगा रहे हैं। अगर वो उद्योग के लिए पैसा लगाएंगे, भारत में आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी विदेशी कंपनी, जर्मनी की कोई कंपनी भारत में कोई उद्योग लगाना चाह रही है, तो ठीक है उनकी अपनी मुद्रा मार्क है वो ठीक है, लेकिन जब वो भारत में उद्योग लगाएंगे तो उनको रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमसे रुपए लेंगे और हमें मार्क देंगे या डॉलर के, जैसा भी होगा उसमें हम नहीं जाते। और जब वो उद्योग लगाएंगे तो सही मायने में सरकार को उससे टैक्स मिलेगा, जो चीज वो प्रोडक्ट करेंगे उससे टैक्स मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार मिलेगा। तो जो रियल जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो तब होगी जब औद्योगिक विकास होने के लिए आपको दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। फॉरेन पैसा आ रहा है, विदेशी मुद्रा आ रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो किस सेक्टर में आ रही है। दोस्तों, यहां मैंने कुछ तरह की बातें आपसे कही, है ना, जैसे जीडीपी की मैंने आपसे बात कही, फिर चालू खाते व्यापार घाटे की मैंने आपसे बातें कही, पोर्टफोलियो निवेश की मैंने बात कही। नो डाउट कि कुछ इसके अच्छे क्षेत्र भी हैं, जैसे आप देखिए कि जो रुपया है डॉलर के मुकाबले अभी भी मजबूत बना हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास सफिशियंट है, वो भी एक अच्छी बात है। शेयर बाजार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, यह भी एक अच्छी बात है। तो ये इंडिकेशंस तो अच्छे हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जीएसटी लागू हो गया है, तो जीएसटी लागू होने से जो हमारी जो वृद्धि दर है वो जो अभी 5.7% दिखा रहा है वो लगभग 8% तक पहुंच जाएगी। अब देखिए वो भविष्य की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है। फिर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी जब हुई थी, तब ये माना गया था, दो वर्ग थे, आपने उस समय महसूस किया होगा, एक तो ये कहा जा रहा था कि ये अर्थव्यवस्था को खराब कर देगी, खत्म कर देगी, हमारी ग्रोथ एकदम रुक जाएगी, मंदी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। लेकिन एक दूसरा वर्ग था जिसको मानने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि थोड़े से समय के लिए ये भले ही ऐसा हो लेकिन हम बहुत जल्दी संभल जाएंगे, अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत ढांचा होगा, अर्थव्यवस्था का मतलब एक व्यापार और प्रोडक्शन और लेन देन, मतलब ब्लैक मनी मार्केट से बाहर चली जाएगी, जीएसटी के माध्यम से एक सिस्टम बन जाएगा, कर की चोरी रुकेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स देंगे तो सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो वो उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर सकती है, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स के लिए कर सकती है, तो अल्टीमेटली सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन उसके लाभ अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग मान रहे हैं कि अब आगे बेहतर होने शुरू होगी। चौंकाने वाली बात इस बीच में यह भी है मित्रों कि जो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का है और जो रियल एस्टेट है, इनमें कोई वृद्धि के संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। और ये तीनों भारत के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है, आईटी में तो सेवा क्षेत्र सेक्टर है, आप जहां सर्विस सेक्टर है, और आप देखिए कि हमारे टोटल जीडीपी में सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 57-58% हो गया, तो बहुत बड़ा रोल है। जो रियल एस्टेट है वो काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब रियल एस्टेट बढ़ेगा तो नौकरियां मिलेंगी, चीजों के इस्तेमाल होने लगा, आपको सीमेंट चाहिए, आपको आयरन चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए, रियल एस्टेट तो बहुत ज्यादा चीजों की डिमांड करता है ना, तो उससे फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसमें जान आएगी। तो इसीलिए आपने न्यूज में सुना होगा कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का ध्यान इस पर है और सरकार इसके लिए अब सोच रही है कि क्या कदम उठाए। तो मित्रों, खासकर मैंने जो अभी आपसे बातें की हैं उसमें देखिए कि काफी टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की है, मेरे पास इतना वक्त नहीं था और मुझे लगता है कि ये डेली ऑडियो का शायद माध्यम भी उतना अच्छा माध्यम नहीं है कि उसके तहत इन चीजों को समझाया जा सके, इसके लिए क्लास लेक्चर सबसे अच्छा होता है। और 15 दिन की क्लास में हम लोग ये सब करते हैं कि बहुत अच्छे से सारी बेसिक चीजें आप सब जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी समझ में आ जाए, तो या तो आप अपनी तरफ से समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज किसी की मदद लीजिए, लेकिन इन्हें समझिए जरूर, तभी आप आज के सिविल सर्विस में जो थर्ड पेपर मेंस का है और प्री में भी जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको हल कर पाएंगे, अन्यथा रटने के आधार पर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से सब देख लेंगे। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ नौजवान साथियों के नाम हैं, मधु अपराजिता, यूएस राजपूत, अर्जव पारेख भावनगर गुजरात से, हर्षिता गुप्ता उन्नाव उत्तर प्रदेश, अशोक राज पुरोहित भाटेलाई राजस्थान, हनी सिंह मुंबई, वैभव श्रीवास्तव, जया वर्मा, राम कुमार पांडे, अभिमन्यु कुमार भोजपुर बिहार, ललिता चौधरी और मनीष सिंह भदौरिया, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।